ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। कोरोना संक्रमण के कारण आज 22 लोगों की हुई मौत। देश भर में 2071 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। लॉकडाउन की किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं, सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गवाली ने किया स्पष्ट। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सचेतना अपनाने का सभी से किया आग्रह। और थाईलैंड में ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, 17 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। अब समाचार विस्तार से। आज देशभर में कोरोना संक्रमण के 22 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देशभर में कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 636 पहुंच गई है। इसी तरह आज 2071 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देशभर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 107,755 हो गई है। आज 1,552 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही देशभर में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 75,804 हो गई है। सक्रिय संक्रमितों की संख्या 31,315 हो गई है। इनमें से 17,666 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 13,649 लोग संस्थागत आइसोलेशन में हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ. जागेश्वर गौतम ने दी। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली ने कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नागरिक सचेतना को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी देशवासियों से इस महामारी को हल्के रूप में न लेने का आग्रह किया है। मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए आज संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परराष्ट्र मंत्री गेवाली ने कोरोना के विषय में कहा कि यदि इस विषय में नागरिक सचेत रहें तो निश्चय ही इसको नियंत्रण किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि बांके, कपिलवस्तु आदि जिलों में पहले स्थिति काफी भयावह थी, परंतु संबंधित व्यक्तियों के प्रयास के बदौलत अभी स्थिति नियंत्रण में है। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री गेवाली ने साफ किया कि अभी सरकार फिर से लॉकडाउन करने के विषय में नहीं सोच रही है। सरकार ने परराष्ट्र मंत्रालय के सह सचिव भरत राज पौड़ेल को सचिव पद में पदोन्नति कर परराष्ट्र मंत्रालय में स्थापित किया है। अश्विन 22 गति हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करते हुए परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली ने बताया कि सरकार ने लुम्बिनी विकास कोष के सदस्य सचिव काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 21 के सानू राजा शाक्य नियुक्ति करने का निर्णय किया है। इसी तरह नेपाल वायु सेवा निगम के महाप्रबंधक में काठमांडू टोखा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 के डीम प्रसाद पौड़ेल को और सिंह दरबार वैद्य खाना विकास समिति के अध्यक्ष में नुवाकोट के डॉ. बाबू राजा अमात्य की नियुक्ति करने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोष के संचालक समिति के अध्यक्ष में अर्थ मंत्रालय के राजस्व सचिव राम शरण पुरासैनी की नियुक्ति करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही आज की बैठक में पेट्रोलियम पदार्थ तथा गैस मूल्य स्थिरीकरण कोष संचालन दूसरा संशोधन नियमावली 2077 को स्वीकृत करने का निर्णय किया है। इसी तरह स्थानीय पुराधार विकास साझेदारी कार्यक्रम नियमावली संचालन कार्यविधि 2077 को स्वीकृत किया गया है। ये जानकारी परराष्ट्र मंत्री गेवाली ने दी। शिक्षा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल कोरोना पॉजिटिव दिखे हैं। ये जानकारी मंत्री पोखरेल के स्वकीय सचिव पूरन केसी ने दी है। साथ ही उन्होंने मंत्री पोखरेल के संपर्क में आए लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने का आग्रह किया है। सरकार और अनशनरत डॉ. गोविंद केसी के बीच सहमति बनने के साथ ही आज सुबह से ही डॉ. केसी का अनशन समाप्त हुआ है। 28 दिनों से आमरण अनशन में रहे डॉ. केसी और सरकारी वाताटोली के संयोजक गोपीनाथ मैनाली के बीच शनिवार 8 सूत्रीय सहमति बनने के बाद डॉ. केसी ने आज अपना अनशन समाप्त किया है। इस सहमति के अंतर्गत करनाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आगामी वर्ष से MBBS कार्यक्रम को संचालित करने और अन्य सभी जगहों में 2080 फागुन 10 गति तक प्राय शुरू करने का उल्लेख किया गया है। इसी बीच नेपाली कांग्रेस ने डॉ. गोविंद केसी और सरकार के बीच की गई सहमति का स्वागत किया है। पार्टी के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ने आज एक बयान जारी करते हुए कल रात की गई इस सहमति का सरकार द्वारा ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे समय है व्यापार विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 फोन गर्नुहोस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो।
1498 फोन गर्नुहोस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो।
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कोविड 19 की महामारी के प्रकोप के मद्देनजर दांग की 3 सरकारी कार्यालयों को बंद किया गया है। दांग देवखुरी जिला अदालत, जिला प्रशासन कार्यालय और नापी तथा मालपोत कार्यालय को बंद किया गया है। दांग देवखुरी जिला अदालत ने अश्विन 30 गते तक के लिए अदालत द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को बंद किया है। जिला प्रशासन कार्यालय दांग ने भी अश्विन 30 गते तक के लिए कार्यालय को बंद करने का निर्णय किया है। इसी तरह दांग जिला नापी तथा मालपोत कार्यालय को भी अश्विन 28 गते तक के लिए बंद किया गया है। प्रतिनिधि सभा की उद्योग तथा वाणिज्य और श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति ने छठ पर्व तथा बाजार अनुगमन के लिए उपसमिति का गठन किया है। समिति की आज की बैठक ने त्योहारों के अवसर पर होने वाली कालाबाजारी के मद्देनजर उपसमिति का गठन किया है। ये जानकारी समिति के सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव ने दी है। सभापति श्रीवास्तव ने बताया कि उपसमिति द्वारा प्रशोधित पीने का पानी और नमक के मूल्य में हुई वृद्धि आदि विषयों में भी अनुसंधान किया जाएगा। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग द्वारा त्योहारों को लक्षित कर बाजार अनुगमन को प्रभावकारी बनाने का कार्य किया जाएगा। विभाग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी। अनुगमन का ये कार्य दशहरे, दीपावली और छठ की छुट्टी के दौरान भी किया जाएगा। इसी तरह विभाग के द्वारा काठमांडू, विराटनगर, जनकपुर, हेटौड़ा, भैरवा, नेपालगंज और धनगढ़ी में भी बाजार अनुगमन के लिए अलग से टोली का गठन किया जाएगा। रेडियो नेपाल की संचालक समिति सदस्य में रेडियो नेपाल के कार्यक्रम महाशाखा के प्रमुख एवं संगीतकार टीकार प्रसाद भंडारी को नियुक्त किया गया है। बता दें कि संगीतकार भंडारी इससे पहले भी 2066 साल में रेडियो नेपाल के संचालक समिति के सदस्य रह चुके हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आज हुई भीषण दुर्घटना में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पूर्वी बैंकॉक में एक बस और ट्रेन के बीच जोरदार टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वाले लोग बस में सवार थे। बताया जा रहा है कि ये लोग किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दुर्घटना में बस के ऊपर का हिस्सा टूट गया और बचाव कर्मियों ने कहा कि क्रेन की मदद से बस को उठाया गया। थाईलैंड में इस तरह की घातक दुर्घटनाएं आम है, जिसके लिए यहां की घातक सड़कों के अलावा तेज गति और नशे में ड्राइविंग करना और कमजोर कानून प्रवर्तन शामिल हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड दुनिया में दूसरा ऐसा देश है जहां सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,75,81,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,81,81,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,78,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां 89,55,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 2,19,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 70,63,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,08,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 50,91,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 और न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण के कारण आज 22 लोगों की हुई मौत। देशभर में 2071 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। लॉकडाउन की किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं, सरकार के प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली ने किया स्पष्ट। कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सचेतना अपनाने का सभी से किया आग्रह। और थाईलैंड में ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, 17 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा घायल। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से मुझे आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।